नारायण 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 तम तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृक् विचरस्व मा। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को लेकर उद्धव जी महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, स्वधाम नय मामपि, मेरे को भी आप अपने साथ ले चलिए। तो भगवान ने यहां ज्ञान का उपदेश किया है उद्धव जी महाराज जी को। भगवान के तीन शिष्य हुए हैं, सर्वविदित हैं आपके अर्जुन हैं, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उपदेश किया है भगवान ने। अर्जुन की योग्यता स्वकर्म निष्ठा स्वधर्म निष्ठा श्लाघनीय है। दूसरे शिष्य हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज जी में भी ज्ञान निष्ठा नैष्कर्म्य परिव्राजक मनोवृत्ति हैं। और तीसरे शिष्य हैं मैत्री जी महाराज। मैत्री जी महाराज परिव्राजक हैं, सन्यासी मनोवृत्ति में रहते हैं, वो हरिद्वार में निवास करते हैं। हरिद्वार ऐसे भी वैराग्य की भूमि है। आपको सबसे ज्यादा सन्यासी महात्मा हरिद्वार में, हिमाचल में, हिमालय उत्तराखंड में मिलते हैं। जब भी आप त्याग और वैराग्य की बात सुनते हैं या बोलते हैं तो आप जरूर बोलते कि हम हिमालय चले जाएंगे। किसी को वैराग्य हो जाए तो वो को आदमी कभी नहीं बोलेगा कि मैं मुंबई चला जाऊंगा। आपके अंदर वैराग्य हो जाए तो आप ये जरूर बोलोगे कि हम हिमालय चले जाएंगे, किसी गुफा में बैठेंगे, गंगा के किनारे बैठेंगे, तप करेंगे। वैराग्य की भूमि हिमालय है, वैराग्य की भूमि गंगा जी है, वैराग्य की भूमि हरिद्वार है, ऋषिकेश है। हरिद्वार में निवास करते हैं मैत्रेय जी महाराज, परम ज्ञान में स्थित हैं, भगवान के वैराग्य संपन्न शिष्य हैं। और इन तीन शिष्यों ने फिर मानव जाति के उद्धार के लिए अपने चरित्र, अपने जीवन से, अपने ज्ञान से प्रभावित किया। ये द्वितीय जो शिष्य हैं भगवान के, उद्धव जी महाराज, ये भी परिव्राजक मनोवृत्ति के हैं। इनके अंदर भी प्रवृत्ति नहीं है, संसार में रहते हुए भी 5 वर्ष की उम्र से वो भगवान की पूजा पाठ करते हैं। 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान के प्रति उनके मन में भगवत भाव था। भगवान श्री कृष्ण के लिए रोते थे बाल्यकाल में उद्धव जी महाराज। तो उनकी मां ने भगवान की स्वर्ण की मूर्ति बना करके दे रखी थी और उस मूर्ति की पूजा किया करते थे 5 वर्ष से। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति बाल्यकाल से ही भगवत भाव, समर्पण, अगाध निष्ठा, जो भगवान बोले वो उनके जीवन में चरित्र बन जाए, अनुकरण बन जाए। हाथ जोड़ करके उद्धव जी महाराज भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान उनको ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश किया है, यथार्थ माम महाभाग तत्चिकीर्षितमेव मे, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु। भगवान ने कहा कि उद्धव तुमने जो भी बोला वो सही बोला है, और तुमने जैसा बोला वैसा मैंने करने की तैयारी कर रखी है। जैसे तुम सोच रहे हो कि मैं स्वधाम गमन करने वाला हूं, बोले बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमको क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे जाने के बाद तुमको यहीं रहना है, तुमको मेरे साथ नहीं आना है, क्योंकि परंपरा को आगे बढ़ाने में दो कारक तत्व हैं हमारे सामने। एक पुत्र है, ये बिंदु परंपरा है, और दूसरी परंपरा ज्ञान परंपरा, शिष्य परंपरा है। आपकी ज्ञान की जो परंपरा है वो शिष्य आगे बढ़ाता है, और वंश की परंपरा को पुत्र आगे बढ़ाता है। भगवान ने सोचा कि ज्ञान की परंपरा अबाध गति से चले, मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरा वैराग्य, मेरा नैष्कर्म, ये सारी चीजें मानव मात्र को कौन देगा, मेरे ज्ञान का संवाहक कौन बनेगा। और ज्ञान का संवाहक बनने के लिए वैसा ही चाहिए ना, जो भगवान के ज्ञान का संवाहक बनने वाला व्यक्ति होगा वो भगवान की कक्षा के निकट होगा। इसलिए भगवान ने कहा भी है, भगवान ने कहा कि उद्धव मेरे से थोड़ा भी कम नहीं है, भगवान ने कहा बिल्कुल मेरे बराबर है। और ये भी भगवान ने बोला कि उद्धव को गुण प्रभावित नहीं करते, ये भगवान ने बोला, आप ध्यान देना। भगवान ने उद्धव जी महाराज जी के बारे में क्या बोला है, अर्जुन के बारे में भी नहीं बोला है बात, बोले एक अणु मात्र भी उद्धव मेरे से कम नहीं है, और वो कभी गुणों से प्रभावित नहीं होता है, वो कभी अवगुणों से प्रभावित नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति को गुण प्रभावित करते हैं, गुण माने ये संसार के आकर्षण, गुण माने संसार का सौंदर्य, गुण माने ये आकृति, गुण माने आकार, हम आकारों से प्रभावित होते हैं, हम सुबह से शाम तक आकार से प्रभावित होते हैं, गुण से प्रभावित होते हैं। जैसे हमने भोजन किया, बहुत अच्छा लगा भोजन, और हम प्रभावित हो गए, भोजन में अटक गए, ये गुण से प्रभावित होना है। कोई चीज हमने देखी बहुत सुंदर मालूम पड़ी, वो सौंदर्य आकृति है, आप जिसको बोलते बहुत सुंदर है, मकान बहुत सुंदर है, ये सौंदर्य, ये आकृतिगत सौंदर्य है, ये जो डिजाइन है वो डिजाइन का सौंदर्य है। आप किसी चेहरे का सौंदर्य देखते, आकार का सौंदर्य है, एक आकार है। भगवान ने कहा सामान्य व्यक्ति आकृति में, गुणों में, सौंदर्य में आकर्षित होता है और अटक जाता है, और जिसका चित्त आकृति में है वो निराकार को समझ नहीं सकता है, जिसका चित्त गुणों में है वो निर्गुण को समझ नहीं सकता है। और आत्म तत्व तो निर्गुण है, निराकार है, उसको समझना है तो हमारे चित्त को निराकार की भूमिका में होना चाहिए, निर्गुण की भूमिका में होना चाहिए। ये आपकी जितनी भी साधना है ये आपके मन को निराकार में ले जाने के लिए, निर्गुण की भूमिका के अनुकूल बनाने के लिए। वासना हमारे चित्त को आकार देती है, दुनिया की कोई भी वासना है ये हमारे चित्त को आकार देती है, चित्रित कर देती है। और जब हमारा चित्त निर्वसन होता है तो हमारे चित्त में आकार नहीं होता है। आपके चित्त में कोई भी वासना नहीं है, आप उस समय देखना आपके चित्त को कोई आकार नहीं, और जैसे वासना हमारे अंदर पैदा हो जाती है हमारे चित्त को आकार दे देती है। भगवान ने बहुत गंभीर बात बोली, साधना की बात बोली। भगवान ने कहा उद्धव का जो चित्त है वो निर्गुण है, वो निराकार है, क्योंकि वो निर्वसन है। और इसीलिए उसका बचा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान ने बचा लिया, उद्धव जी महाराज जी को बचा लिया। भगवान ने कहा तुम भी यदुवंशी हो, और श्राप तो यदुवंशियों को मारे जाने का है, लेकिन मैं तुमको बचा लूंगा। यहां भगवान ने कहा कि नहीं, तुमको रहना है, तुमको बचना है, क्योंकि मेरे ज्ञान को, मेरी भगवत्ता को, मेरा धर्म, मेरा जो काम है वो समाज तक पहुंचना है, पहुंचाना है। भगवान ने कहा कि ना वक्तव्यम त्वया इह, तुम्हें यहां नहीं रहना है, तुम्हें चले जाना है। गच्छ उद्धव मयादिष्टम बदर्याख्यम ममाश्रमम, तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ, जहां पर बहुत सुंदर मेरा आश्रम है। भगवान कहते मेरा आश्रम है, शायद भगवान ने बना के रखा होगा। यदि वो दूसरे का आश्रम होता तो भगवान ममाश्रमम नहीं कहते, वो तो द्वारका के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे भूमंडल में उनका शासन चलता था। और भगवान ने यह भी बोला है कि वहां पर तप्त कुंड है, और उस तप्त कुंड का मैंने सेवन किया है, मैंने स्नान किया है, और वर्षों तक वहां रहकर मैंने साधना की। भगवान का आश्रम रहा होगा, बहुत बड़ा रहा होगा। बहुत सारे महात्मा बोलते हैं भैया आप नेपाल में आओ, हमारा बहुत बड़ा आश्रम है, वृंदावन आओ, बहुत बड़ा आश्रम है, अखंडानंद आश्रम। भगवान इशारा कर दिया तुम्हें रहने की चिंता नहीं है, मम आश्रमम, बहुत बड़ा मेरा आश्रम है, बद्रिक आश्रम, और वहां जाके रहो, साधना करो। गच्छ उद्धव, और भगवान ने विधि भी बता दी वहां जाने के बाद कैसे रहना है, वहां जाना कैसे है। आप जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे जाते हैं ये महत्वपूर्ण है, आप रहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे रहते हैं ये महत्वपूर्ण है। रहते तो बहुत हैं, वहां तो मच्छर भी रहते हैं, वहां मक्खियां भी रहती हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, वहां बहुत सारे आदमी रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप वृंदावन में रहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये स्वर्ग है, ये हरिद्वार है, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय गुरु शरणानंद जी महाराज ने बोला था, ये प्रेमपुरी आश्रम हरिद्वार है। बात सत्य है, जब यहां आने के बाद आपका मन एकदम स्थिर हो जाता है, आपकी सारी प्रवृत्तियां खंडित हो जाती हैं, आप अखंड में प्रवेश करने लगते हैं। आप जहां भी रहते हैं आपका रहने का तरीका क्या है, बहुत पवित्र देश है, पवित्र काल है, पवित्र लोगों के मध्य में हम रह रहे हैं, लेकिन कैसे रह रहे हैं, ये रहने का तरीका हमारे जीवन का निर्माण करता है, ये तरीका ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने यहां तरीका बताया, तुम्हें वहां जाना है तो रहना कैसे है। मेरे को लगता है कि ये बातें जो भगवान बोल रहे हैं, भगवान की करुणा बोल रहे हैं। जैसे मां अपने बच्चे को समझाती हैं कि बेटा वहां जाने के बाद तुम्हें कैसे रहना है, समझाती हैं ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो। भगवान ने पहला सूत्र दिया, तरीका दिया, सर्वम तु त्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु। ये आध्यात्मिक जीवन की बहुत गहरी बात बोली भगवान ने, बोले जहां तक आपके संबंध है, रिलेशन, बात बहुत कठिन भी है, जहां तक तुम्हारे संबंध है, उन संबंधों का, संबंधों में जो आसक्ति है उसका परित्याग करो। ये भगवान ने पहला सूत्र दे दिया, क्योंकि तुमको जाना है बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ में रहना है, यहां नहीं रहना है। और यहां रहने, यहां से छोड़ने के लिए तुम्हें वैराग्य को धारण करना होगा। आपको जाना है तो आपको यहां आसक्ति जो बंधी है, यहां जो बंधन है उसको छोड़ना पड़ेगा। और भगवान का सर्वम, आदमी बोलता है कि महाराज हमारी कहीं आसक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज हमारी कहीं भी आसक्ति नहीं है। तो आप बोलो चलो हरिद्वार, चलो वृंदावन, तो आप क्या जवाब दोगे? बोले महाराज वो तो नहीं होगा। बोले क्यों? वो घर है ना। बोले घर है, घर संभालना है। तो आदमी को मालूम नहीं पड़ता है, आदमी को तो ऐसा ही लगता है आसक्तियों में रहते रहते आसक्ति मालूम नहीं पड़ती है। हम जिस चीज में रहते हैं वो चीज मालूम होना कम हो जाती है, ये हमारे मन का स्वभाव है। बंधन में रहते रहते बंधन मालूम होना कम हो जाता है, आसक्तियों में रहते रहते आसक्तियां मालूम होना बंद हो जाती हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, आप किसी बहुत क्रोध करने वाले आदमी को पूछो आप क्रोध करते हो? बोलेगा कहां करता हूं। वो क्रोध नहीं करता इसके लिए वो झगड़ा भी करेगा, बहुत आश्चर्य की बात है। आप किसी आदमी को बोलो कि तुम बहुत क्रोध करते हो, वो क्रोध करते हुए आपको समझाएगा कि मैं क्रोध नहीं करता हूं। वो बोलेगा मैं कहां क्रोध करता हूं। जहां पर भी बहुत सारे अवगुणों में हम जीते हैं और वो जीते जीते वो स्वभाव बन जाता है, वो मालूम होना कम हो जाता है, फिर क्रोधी को मालूम नहीं पड़ता कि मैं क्रोध करता हूं, आदत हो जाती है। जैसे कोई कैदी कारागृह में रहता है, पहले उसको मालूम पड़ता है, बहुत मालूम पड़ती है, वो सीमाएं मालूम पड़ती हैं, और उसके बाद धीरे 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 वो जेल जेल मालूम नहीं पड़ती हैं, वो स्वभाव बन जाती है। और वो इतना स्वभाव बन जाती है कि उसको आप बोलो कि तुम जेल से बाहर हो रहे हो, तुम मुक्त हो रहे हो, उसको बंधन बंधन मालूम पड़ने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं बाहर जाके क्या करूंगा, यहां तो बहुत अच्छा था। इसलिए आदमी अज्ञान में रहते रहते वो इतना अज्ञानी हो जाता है, इतना स्वभावगत अज्ञान हो जाता है कि उसको मालूम नहीं पड़ता फिर कि मैं अज्ञानी हूं। इसलिए भगवान ने कहा सर्वम, बहुत गहरी बात बोली भगवान ने, कहा तुम्हारे अंदर जितनी भी आसक्तियां हैं, एक सुई के साथ आसक्ति हैं। आपकी यदि केवल एक अपने कौपिन में भी आसक्ति है तो भी आसक्ति है, और वो बहुत गहरी है। एक आसक्ति भी, एक हमारे पंडित जी थे वृंदावन में, वो अक्सर हम लोगों को चिढ़ाते थे। हम लोग वेदांत की चर्चा करते थे, जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या, वो बैठे बैठे कोई गुलाब का फूल ले लेते हाथ में और बोल लेते थे ब्रह्मचारियों तुम लोग बोलते हो ये जगत मिथ्या जगत मिथ्या, लेकिन एक फूल भी आपको अनंत जन्म दे सकता है। इस एक फूल की आसक्ति भी आपको अनेक जन्म दे सकती है। वो सही बोलते थे, वो आसक्ति तो आसक्ति चाहे अनेक के प्रति हो चाहे एक के प्रति। इसलिए भगवान ने कहा सर्वावशेषेन सर्वम त्यक्त्वा सर्वबंधुषु, जहां पर भी तुम्हारी आसक्तियां हैं, यहां द्वारका में, द्वारका के पदार्थों में, यहां के लोगों में, यहां की व्यवस्था में, आप वहां से अपना मन हटा दो और मय्यावेश्य मनः सम्यक। ये पहला कदम हुआ त्याग, त्याग त्याग के लिए नहीं होता है, छोड़ना छोड़ने के लिए नहीं होता है। छोड़ने के बाद आपको अपने मन को परमात्मा में लगाना है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आप नैष्कर्म को प्राप्त हो गए, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? आप ऐसे बैठे रहोगे, आप ऐसे सोते रहोगे, क्योंकि अकर्म किसी चीज को पैदा नहीं करता है, कुछ करने से कुछ पैदा होता नहीं है। आपके जीवन में जो भी चीज पैदा होती है वो कुछ करने से होती है, नहीं करना आदमी को किसी सफलता में नहीं ले जाता है। आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करने से कुछ पैदा नहीं होता है, पैदा करने के लिए कुछ आपको करना होता है। इसलिए भगवान ने कहा त्याग करने के बाद तुम करो, क्या करो? अरे माम मया विश्य मनः, तुम अपने मन को मेरे में रखो। और ये मन मेरे में रखने का अर्थ है, भगवान में रखने का अर्थ है, आत्मा में रखो, अपने में रखो, सत्य में रखो, ईमानदारी में रखो, स्वधर्म में रखो, योग में रखो, सत्संग में रखो। यहां पर भगवान में रखने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का फोटो अपने गले में टांग के उसको देखते हुए घूमे। यहां भगवान में मन रखने का अर्थ है मन सत्संग में रहे, मन ध्यान में रहे, मन प्राणायाम में रहे, मन जप में रहे, अच्छे कामों में रहे, आध्यात्मिक गतिविधियों में मन बना रहे, सम्यक। और यहां भगवान बहुत सावधानी से बोल रहे, क्योंकि ये उपदेश अब बिल्कुल अंतिम अंतिम उपदेश है, ये बहुत अंतिम उपदेश है। अब इसके बाद उपदेश सुनने के लिए आप उद्धव नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भगवान को मालूम है, भगवान सावधानी से बात बोल रहे हैं, भगवान अवसर देना नहीं चाहते। कई बार आदमी अवसर पा लेता है, आदमी अवसर पा लेता है, अपने उपदेशों को भी गलत तरीके से ले लेता है। इसलिए भगवान कहते सम्यक, सही ढंग से, तो मेरा चिंतन करो सही ढंग से, तुम अपने मन को मेरे में रखो सही ढंग से, सम्यक। आप भोजन करते हो सम्यक करते हो कि असम्यक करते हो? आप बहुत सही ढंग से करते हैं, आप संसार की कोई चीज भी करते हैं तो बहुत सही ढंग से करते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक कार्य करना होता है तो वहां हम ध्यान नहीं रखते, हम उतना अलर्ट नहीं रहते, हम उतना सावधान नहीं रहते, वहां उतना हम आस्थावान नहीं बनते। बात तो सत्य है, जब आप भोजन करते तो कितना प्रेम होता उसमें, कितनी एकाग्रता होती उसमें, कितना स्वाद होता है उसमें। इसलिए भगवान ने कहा सम्यक, समद्रिक, और एक दूसरा शब्द दे दिया भगवान ने, सम्यक और समद्रिक, यंत्रंग बात बोल दी। आप विचरण करोगे और विचरण में तुम्हारे विषमता बनी रहेगी, आप जाओगे तीर्थ में और वहां जाकर के आप देखोगे ओहो ये तो पंडा बड़े परेशान कर रहे हैं, वहां गलियों में देखोगे अरे यहां तो बहुत गंदगी है, आप वहां जाके विषमता के दर्शन करोगे तो आपके जीवन के वैराग्य के इन संबंधों का आपको फल नहीं मिलेगा। आपने वैराग्य धारण किया है और आप विचरण कर रहे हैं, आप बद्री नारायण में गए और वहां जाने के बाद आप विषमतापूर्ण दृष्टि से दुनिया को देख रहे हैं, वहां के लोगों को देख रहे हैं, तो मेरे को प्राप्त नहीं कर पाओगे, वैषम्य ये संसार है और इस संसार में तुम फंसोगे, तुम अटकोगे। इसलिए नारायण भगवान ने बहुत सुंदर बात बोली, भगवान ने कहा समद्रिक, तुम अपने दृष्टियों में सम रखो, यहां सम के दोनों अर्थ हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थितः, यहां समता का अर्थ समान भी है, समता माने समान। आप वैराग्य धारण कर विचरण कर रहे हैं तो आपको छोटा बड़ा अच्छा बुरा कुरूप सुंदर विद्वान मूर्ख अच्छा बुरा मेरा तेरा ये जो भी द्वंद्वात्मक विषमता है, इस विषमता से अपने मन को ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये द्वंद्व आदमी को अटका देते हैं, ये द्वंद्व आदमी को भटका देते हैं। आपके अंदर द्वंद्व है, ये मेरा, आप अटक गए, और जब जहां आपने बोला मेरा तो कहीं ना कहीं तेरा आएगा। आपको कोई सुंदर मालूम पड़ता है तो कोई कुरूप मालूम पड़ेगा, आप कुरूपता से घृणा करोगे, और सुंदर मालूम पड़ा उसे आसक्त होंगे। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, साधक का जीवन ऐसा नहीं चलता है। साधक के जीवन में समता चाहिए, साधक के जीवन में समता चाहिए। बोले सामद्रिक दृष्टि में समता रखो, और यहां सम शब्द का अर्थ ब्रह्म भी है। आप सर्वत्र शुणी चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। यह आपके वेदांत की बहुत गहरी बात है। अक्सर हम लोग बड़े चालाकी कर जाते हैं, और वो चालाकी क्या है, दृष्टि में समता, व्यवहार में विषमता। बोले यही तो वेदांत है। हम लोग समझते हैं भैया हमारी दृष्टि में तो समता होना चाहिए, लेकिन व्यवहार कैसा भी वो चल जाता है। आपके दृष्टि में यदि समता है तो आपके आचरण में विषमता कैसे होगी। परम पूज्य महाराज श्री जब उनकी पहली बार एक छोटी सी पुस्तिका मैंने पढ़ी, और यहां हम लोग बैठकर विचार विमर्श करते थे, संगोष्ठी करते थे, साधु महात्मा महाराज जी की कोई भी पुस्तक लेकर विचार विमर्श करते थे, उन विचारों के प्रसंग में मैंने पढ़ा। बनारस से मैं पहली बार आया, और एक प्रसंग मैंने केवल महाराज श्री का पढ़ा, और पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि ओहो ये तो बहुत बड़े महापुरुष होने चाहिए। और वो प्रसंग था, वहां लोगों ने सुनाया ये महाराज श्री के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु तपस्वी, बड़े बड़े उद्योगपति, सब लोग आते थे, आस्थावान लोग। उसमें बहुत गरीब भी लोग आते थे, तो उन्होंने सुनाया कि एक कोई बहुत गरीब आदमी जो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहना हुआ नहीं, भूखा नंगा, जिसको आप कंजरा बोलते हो ना, कंजरा बोलते, कंजरा टाइप का, हो स्नान नहीं किया हुआ है, गंदे मैले कपड़े हैं, पसीने की बदबू आ रही है, और वो कंधे पर अपना वो पोटली लिया हुआ है, चप्पल नहीं है, जिसको आप छूना पसंद नहीं करोगे, आप जिसको छूना पसंद नहीं करोगे, और वो व्यक्ति महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आता। अब आप यहां पर भी प्रेमपुरी में वो आना चाहे तो आप आने दोगे, वो चौकीदारी बोल देगा थोड़ा साइड हो जाओ, बोलेगा राम राम, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वहां पर भी ऐसा ही था, लोग रोक देते थे, लोग बोलते भैया तुम यहां मत आओ, बाहर गेट के बाहर वो जबरदस्ती आ जाता, रास्ते में महाराज जी कहीं मिले दौड़ता हुआ आता, साष्टांग प्रणिपात होता महाराज जी। बहुत इच्छा थी उनके मन में, महाराज जी के पास आऊं, बैठूं, उनके दर्शन करूं। एक दिन उन्होंने महाराज जी के पास शिकायत कर दी, महाराज मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं, आपका सानिध्य चाहता हूं, लेकिन मेरे को कोई आपके पास आने नहीं देते, लोग रोक देते हैं, मैं क्या करूं। कहा महापुरुष देखो, महाराज श्री ने कान में बोला धीरे से, बेटा 2 बजे तुम आया करो, 2 बजे दिन में 2 बजे, क्योंकि 12 बजे के बाद साधु लोग अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं, बोले 2 बजे सब लोग सो जाते हैं, उस समय तुम आया करो, 2 बजे। क्या महापुरुष। और वो सत्य 2 बजे वो व्यक्ति महाराज जी कुंडी खोल के रख देते थे, और वो 2 बजे आराम से वो व्यक्ति जाता, और वो झोला झंझट जो भी था वो सब लेके जाता था, वो और वहां जाके महाराज जी को प्रणाम करता, और महाराज जी के ऊपर लेट जाता था वो। अब महाराज जी तो लेटे हुए, और वो फिर महाराज जी फिर उसके पीठ पर हाथ फेरते, सिर पर हाथ फेरते, फिर गुनगुनाते, आशीर्वाद देते, बेटा बेटा बहुत अच्छा, और उसके बाद फिर तृप्त हो जाता, वो चला जाता, वो हमेशा का क्रम बन गया। आप जितने भी हमारे गोविंदानंद जी थे, प्रबुद्धानंद जी थे, हमारे मान जी महाराज जी थे, सब अपने अपने कक्ष में आराम करते। अब वो 2 बजे का समय महाराज जी आराम कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी आराम नहीं करते, वो उस आदमी को मिलते। एक दिन अचानक कोई उठ करके देखा कि महाराज जी के कमरे में कुछ फुसफुस हो रहा है, बात क्या, कौन गया, जाके देखा तो वही आदमी। और वो ऐसे नहीं है, वो महाराज जी के पेट के ऊपर, महाराज जी ऐसे बहुत मोटे ताजे जो थे, पेट के ऊपर लेटा हुआ है, महाराज जी हाथ फेर रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं, चिदानंद रूप हसी हो हसी हो। लोगों ने देखो हल्ला मचा, सब लोगों को जगा दिया। अरे बोले उठो उठो, महाराज जी के कमरे में भिखारी गया है, भिखारी गया है। अब उनको तो लगा कि जबरदस्ती गया होगा। सब लोग उठे, फिर अब छीनने लगे उसको, महाराज जी से छीन रहे थे लोग। फिर हाथ पैर उठा करके ऐसे टांग के ले गए बाहर। अब वो क्रम था, 2 बजे वो पहुंच जाता है, महाराज जी के ऊपर लेट जाता। फिर लोगों ने ड्यूटी लगाई, 2 बजे भैया सावधान। वो आएगा, 2 बजे आएगा वो। और महाराज जी को बोला कि आप कुंडी क्यों खोल के रखते हो। महाराज ने कहा भैया मेरे पास तो कोई भी आए तो मना क्यों करते हो। लोग बोल रहे थे महाराज जी को कि महाराज ये आदमी आने से आपकी इज्जत चली जाएगी, ऐसा आदमी आएगा तो इज्जत चली जाएगी, इसकी जाति का पता नहीं है, ये कौन है, क्या है, आचरण इसका कुछ नहीं है। लेकिन महाराज ने कहा नहीं, सब मेरे हैं। ये देखो, उनके दृष्टि में भी समता है और उनके आचरण में भी समता है, वहां भेद नहीं है। ऐसा ही महाराज जी के जीवन का एक उदाहरण आता है। एक बार महाराज जी कहीं यात्रा कर रहे थे ट्रेन की, ये कानपुर की घटना है शायद, जहां से महाराज जी गुजरते थे वहां हजारों लोग मिलने के लिए आते थे, वहां से ट्रेन गुजर रही, भोजन लेके आते थे, सिंधी समाज के बहुत सारे लोग पहुंचे, और वो सिंधी माताएं होती हैं, वो थोड़ा गले में मिल लेती हैं। अब महाराज जी ट्रेन से नीचे उतरे, कुर्सी लगी हुई है, भोजन वजन सब दे रहे, और जो भी आए महाराज जी के चरण छू रहे, गले मिल रहे, आनंद उत्सव बन रहा है। सामने एक झाड़ू लगाने वाली माई खड़ी थी और वो दूर बैठ करके वो रो रही थी, और वो रोते रोते सोच रही थी कि क्या मेरा ऐसा सौभाग्य है। देखो ये लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, एक महात्मा के चरण छू रहे हैं और वो गले भी मिल रहे हैं, मैं तो बहुत पापी नहीं हूं, मैं ऐसे कुल में पैदा हुई जहां साधु को छू नहीं सकती। आश्चर्य की बात, महाराज उठ के खड़े हो गए करते, और उठ के खड़े होकर के महाराज जी ने बोला ए मैया आओ आओ इधर आओ इधर आओ। वो मैया तो समझ ही नहीं पा रही थी, वो किसी दूसरे को बोल रहे होंगे, पीछे घूम के देख रही थी पीछे कोई होगा मेरे। महाराज जी ने कहा मैया तुमको ही बोल रहा हूं आओ आओ आओ। बोले यहां सबके लिए जगह, आओ जाओ। और आगे बढ़े महाराज जी, और उस माता को भी जो झाड़ू लगाती है रेलवे स्टेशन पर, उसको भी गले मिले। अब क्या बोलोगे आप, आपके आचरण में नहीं आएगी समता। आपके दृष्टि में यदि समता है तो आप किससे घृणा करोगे, और ये बाहर की घृणा आपको अंदर ले जाएगी। इसलिए भगवान ने सावधान किया उद्धव जी महाराज जी को, उद्धव समद्रिक विचरस्व, और भगवान ने कहा कि तुम समदृष्टि का आश्रय लेकर एक जगह पर नहीं रहना है। भगवान ने और सावधान किया, विचरस्व, विचरस्व माने घूमते रहो, क्योंकि एक जगह पर रहोगे तो आसक्तियां बढ़ेगी। आदमी जहां पर रहता है वहां आसक्ति हो जाती है। एक बात मैं आप लोगों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूं, यहां पर आप सत्संग में आए, लेकिन मैं देखता हूं आप जब भी आते हो वही उसी कुर्सी पर बैठते हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है, आप जब भी आओगे तो आप उसी कुर्सी पर बैठोगे। पहले दिन जिस कुर्सी पर आप बैठते हो, जब दूसरे दिन आते हो तो आप उसी कुर्सी पर चले जाते हो, तीसरे दिन आओगे तो वही कुर्सी देखता, कहां है मेरी कुर्सी। आदमी क्या सोचता है, आप पहले दिन आए और जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जैसे आप दूसरे दिन आओगे तो सबसे पहले आपके मन में क्या भाव पैदा होगा, मेरी कुर्सी किधर है, ओ मेरे कुर्सी पर कोई बैठा है, बड़ा दुख होता है, मेरे स्थान पर कोई दूसरा बैठा है। और कई बार आदमी बोलता भी, भैया उस कुर्सी कई बार आदमी बोलता भी, भैया ये तो मेरी कुर्सी है, नाम रखा है क्या ये क्या बात है, ये बहुत गहरी बात है। आप एक दिन बैठे कुर्सी के ऊपर और वो कुर्सी या बाहर नहीं रही, आपके मन में चली गई, आसक्ति हो गई, वो बैठने की कुर्सी के ऊपर आसक्ति हो गई, आप जिस जमीन पर बैठ गए और वो जमीन के साथ आसक्ति बनी, ये बहुत आश्चर्य की बात। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, तुम आग्रह मत करो, विचरण करते रहो, तुम घूमते रहो। भगवान को मालूम था ये परम ज्ञान को प्राप्त होगा, एक जगह पर रहेगा तो पुनः वो अपना संसार खड़ा करेगा, इसलिए भगवान का विचरस्व। और कहां विचरण करें, ऐसा नहीं कि अपने घर में घूमते रहो, अपने शहर में घूमते रहो, अपने जन्मभूमि के आसपास घूमते रहो, भगवान का नहीं नहीं गांव, पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि भगवान को यह भी मालूम है मैं इसको घूमने के लिए बोलूं तो ये कहीं द्वारका के आसपास मेरे घूमने। कई बार ऐसा होता है ना कि भैया ओहो ये तो हमारी जन्मभूमि, आदमी जन्मभूमि के आसपास घूमता रहता है, भगवान ने कहा घूमो घूमते रहो बस, नहीं भगवान ने कहा गांव, पूरे पृथ्वी मंडल जहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जहां आसक्ति का कोई अवसर नहीं है, आप विचरण करते रहो घूमते रहो। भगवान ने बहुत उत्तम कोटि की बातें बता दी, ओहो अब मालूम पड़ा, आप उद्धव जी महाराज जी को अब मालूम पड़ा, ओहो वो समझ गए, अच्छा ये बातें बहुत गंभीरता से जब भगवान ने बोली, उद्धव जी महाराज समझ गए अब मेरे को क्या करना है। बोले बिल्कुल मैं वैसे ही विचरण करूंगा, नारायणम नरसखम शरणम प्रपत्ते, दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए घुटने के बल पर उद्धव जी महाराज, और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे को ज्ञान का उपदेश करो। नारायणम नरसखम, उद्धव जी महाराज जी के मन में भगवान के प्रति बहुत ऊंची भावना है, इसलिए बोला नारायण, बोला आप नारायण हैं, नारायण हैं, आदि नारायण, आप तत्व हैं, आप भगवान हैं। और उसके बाद भी नरसखम, आप नारायण हैं लेकिन नर के सखा है, आप जीव के सखा है, सखा मतलब दोस्त, दोस्त सखा का मतलब होता है दोस्त, सखा का मतलब मित्र होता है, और सखा का मतलब होता है समानम ख्याति, ख्याति माने प्रतीति, स्वभाव, व्यसन, सारी चीजें समान हो, दोस्ती वहां बनती है। वेदांत का पढ़ने वाला साधक हो तो वेदांत पढ़ने वाले साधक के साथ दोस्ती हो जाती है, कोई भक्ति का साधक होता है तो भक्ति वाले साधक के साथ दोस्ती हो जाती है, कोई खाने पीने वाला आदमी होना तो उसकी खाने पीने वाले से बड़ी चट से दोस्ती हो जाती है, ये समान स्वभाव की बात है। ये बोले आप दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं, बोले नर सखम जीवात्मा के, आप दोस्त हैं, बहुत मदद करने वाले हैं, ओहो आपने इन जीवात्माओं के संरक्षण के लिए, जीव के संरक्षण के लिए आपने अवतार ग्रहण किया, इससे बड़ी क्या दोस्ती हो सकती है, जीवात्माओं के उद्धार के लिए आपने अवतार ग्रहण किया, इससे बड़ी कोई दोस्ती नहीं हो सकती है। बोले नरसखम शरणम प्रपद्ये, बोले मैं आपकी शरण में हूं, ज्ञान का उपदेश करो, आप जो भी जीवन में सत्य हैं उसका उपदेश करो, अभी अंतिम उपदेश है नारायण, ये भगवान का अंतिम उपदेश, शरणागति उद्धव जी महाराज जी की हुई भगवान के चरणों में, शरणागति हुए बिना ज्ञान का उपदेश संभव नहीं है। ये आस्था की अंतिम परिणति है शरणागति। हमारे जीवन में दो प्रकार की शरणागति होती है, दो प्रकार की आस्थाएं होती हैं। एक आस्था आपका आत्मिक भाव है, वो अनभिव्यक्त है, आपके अंदर है, आस्था आपके अंदर है, और वो आस्था प्रमेय नहीं अप्रमेय है, अदृष्ट है। आपके अंदर कितनी आस्था है मालूम नहीं पड़ेगी। आपके अंदर बहुत आस्था है लेकिन वो बहुत आस्था दूसरे को मालूम नहीं पड़ती है। आपके अंदर गुरु के प्रति निष्ठा है, बहुत श्रद्धा है लेकिन वो श्रद्धा मालूम नहीं पड़ती। कैसे मालूम पड़ेगी? वो स्वसंवेद्य है लेकिन वो अभिव्यक्त हो जाए हमारी क्रियाओं में, वो अभिव्यक्त हो जाए हमारे शब्दों में, तो वो दृश्य हो जाती, वो दृष्ट हो जाती, वो मालूम पड़ती हैं। आपके अंदर बहुत भगवान के प्रति प्रेम है, बहुत प्रेम है, आपके मन में बहुत गुरु के प्रति प्रेम है, लेकिन वो तब तक मालूम नहीं पड़ेगा जब तक आप रमणीत नहीं पहुंचोगे। हाँ भाई, आपके अंदर आस्था है और आप बोल रहे हो मैं तो बहुत चाहता हूं आपसे, बहुत चाहता हूं, कितने दिन हो गए गुरु के पास जाके? बोले गए थे 4-5 साल पहले। आहा, गुरु जी से तो बहुत प्रेम है। कई बार लोगों को तो ये नहीं मालूम पड़ता कि तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है। बोले हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत है, वो 2 साल पहले हमने मंत्र दीक्षा ली थी। बोले नाम? नाम शाह जी, नाम क्या है? नाम गायब हो गया। आपके अंदर आस्था होगी ना तो आस्था क्रियाओं में उतर आती है, और जो आस्था क्रियाओं में उतर आती है वे वास्तविक होती है। जो आस्था आपकी क्रियाओं में अभिव्यक्त होती है, जो आस्था आपके जीवन में व्यक्त होती है, वही आस्था वास्तविक होती है, अन्यथा नहीं। ऐसे कैसे संभव है कि आपके अंतःकरण में प्रेम हो और बाहर ना आए? आपके अंतःकरण में गुरु के प्रति निष्ठा हो और वो बाहर ना आए, ये कैसे संभव है? ये क्रिया में किसी पदार्थ के रूप में परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं मां का जो प्रेम है वो दुग्ध बनकर व्यक्त होता है, व्यक्त होता है दुग्ध के रूप में। मां उसका पालन पोषण करती है, मां उसको भोजन कराती है, वस्त्र पहनाती है, सुरक्षा देती है। ये सारी चीजें प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। ऐसे कैसे होगा कि मां का बहुत अपने बच्चों से प्रेम हो और अकेले बैठ के खा ले हो? ऐसे कैसे संभव है? मां अपना स्वयं का भोजन बच्चों को दे देती है, वो स्वयं भूखी रहती है। इसलिए आस्थाओं का दो प्रकार है, समर्पण के दो प्रकार हैं, एक दृष्ट और दूसरा अदृष्ट। जो दृष्ट हैं वो सबके लिए दृष्ट हैं, और जो अदृष्ट हैं वो केवल अपने लिए दृष्ट हैं। आपके अंदर की जो श्रद्धा है वो केवल आपको मालूम पड़ती है, वो दूसरे को मालूम नहीं पड़ती है। लेकिन जो दृष्ट हैं आपके क्रियाओं में, आपके आचरण में, आपकी वाणी में, वो दृष्ट हैं, वो सबके लिए मालूम पड़ती हैं। अर्जुन के मन में भगवान के प्रति समर्पण था, वो कब मालूम पड़ा? शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मालूम पड़ो हो भगवान के प्रति वो समर्पित हो गया। और वो जो समर्पण था वो क्रियात्मक समर्पण था, वो समर्पण क्रियात्मक। आपके यहां 3 शब्द हैं, विवेक, वैराग्य और उपरति। आप जब भी प्रकरण ग्रंथ पढ़ते हैं ये 3 चीजें आप श्रवण करते हैं। पहला आपके जीवन में भाव है विवेक, दूसरा भाव है वैराग्य, और तीसरा भाव है उपरति। जो विवेक है ना वो ज्ञानात्मक विवेक, सत असत विवेक, अच्छे बुरे का विवेक ज्ञान है, धर्म अधर्म का ज्ञान विवेक, नीति अनीति का ज्ञान विवेक है, प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान विवेक है, आत्मा अनात्मा का ज्ञान विवेक है। और जब विवेक होता है तो वो विवेक वो ज्ञान आपको वैराग्य में ले जाता है। आपको मालूम पड़ा ये सत्य है और ये असत्य है, आपको वैराग्य होगा। वैराग्य माने नहीं हम असत्य के तरफ नहीं जाएंगे, त्याग की इच्छा। वैराग्य का अर्थ है त्याग की इच्छा, माने छोड़ना चाहते हैं। आपको मालूम पड़ा कि हो ये चीज जो है हमारी शुगर बढ़ाती है, मालूम पड़ा। मालूम पड़ने के बाद आप क्या करते हो, इच्छा करते हो, इसको हम छोड़ना चाहते हैं। अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ने की जो इच्छा है उसको वैराग्य बोलते हैं। आप ध्यान देना ये शब्द बहुत गहरे हैं। विवेक ज्ञानात्मक है, वैराग्य इच्छात्मक है, और उपरति क्रियात्मक है। उपरति माने छोड़ दिया। उपरति का अर्थ छोड़ने की इच्छा नहीं है। आदमी बोलता है ना, ओ हम तो छोड़ना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, ऐसा भी बोलता है आदमी। बहुत इच्छा है छोड़ने की, बहुत इच्छा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन वो इच्छा जब क्रियाओं में उतर आ जाए और आप सब कुछ छोड़ देना रहे तो वो छोड़ने का नाम ही आपकी उपरति है। उपरति इसलिए विवेक का फल वैराग्य है और वैराग्य का फल उपरति है। उपरत हो गए मैंने छोड़ दिया। ये छोड़ने की इच्छा नहीं है, छोड़ना है। इसलिए वेदांत के तीन भाव हैं। सत्संग करते 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 आदमी के अंदर विवेक जागता है। सत्संग आपको विवेक में ले जाता है और विवेक पैदा होने के बाद हमारे अंदर फिर इच्छाएं पैदा होने लगे, ओ ये चीज अच्छी नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए। ये भी बहुत गहरी बात है। आप छोड़ना चाहते हैं, ये भी बहुत गहरी बात है। आप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं तो आप कहां जाओगे, आप आगे बढ़ोगे नहीं। इसलिए सत्संग का परिणाम ज्ञान है, विवेक है, और विवेक का परिणाम इच्छा है, वैराग्य। आप चाहते हैं, जप करना चाहते, आप प्राणायाम करना चाहते हैं, आप सत्संग करना चाहते हैं, और उसके बाद उपरत। उपरति माने ओहो जिसको छोड़ना था छोड़ दिया, और आत्म तत्व को पकड़ना था उसको पकड़ लिया। ये तीन हमारे स्तर हैं, विवेक वैराग्य और उपरत। ये क्रियात्मक त्याग, और वो समर्पण भी क्रियात्मक। यहां अर्जुन के जीवन में समर्पण क्रियात्मक है। हाथ जोड़ के बैठ गया, वहां एक शब्द का प्रयोग किया, बहुत गहरे शब्द का प्रयोग है, बभुआ तूष्णीम बभुआ। ये उपरति है, तूष्णीम बभुआ। उन्होंने अपने हाथ से धनुष बाण रख दिया और वो ऐसे जगह पर जाके बैठ गया। रथ में तीन जगह हुआ करती है, एक तो सारथी रथी, और एक सबसे पीछे वाले हिस्से में भी जगह होती है जहां शस्त्र अस्त्र रखते हैं, या हार बहुत ज्यादा थक गया हो, घायल हो गया हो रथी, तो बैठने की जगह पीछे छोटी सी जगह होती है। और वो रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया और कैसे बैठा, बोले तूष्णीम। तो वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया व्यास जी महाराज ने, तूष्णीम बभुआ। बभुआ शब्द का, ये संस्कृत का बड़ा मजेदार शब्द है। ये बभुआ शब्द परोक्ष अर्थ में है। परोक्षे लिट्ठ एक सूत्र है, और उससे शब्द बनता है बभुआ, माने राम राजा हुए। आप बोलते हैं राम राजा हुए और महात्मा गांधी हुए, इन दोनों में अंतर क्या है? इंदिरा गांधी हुई, इसमें अंतर क्या है? वाजपेयी हुए, इसमें अंतर क्या है? आपने वाजपेयी को देखा है ना, वो भी हुए, और राम राजा हुए ये भी आपने परोक्ष, लेकिन देखा है क्या, जो परोक्ष देखते हैं ना वो परोक्ष अलग है, और जिस परोक्ष को हमने देखा ही नहीं, बहुत पुराना है, वो परोक्ष लिट बनता है और वो शब्द बनता है बभुआ, नहीं तो अभूत बनता है। अभूत, अभूत माने अभूत का भी अर्थ होता है हुआ और बभुआ का भी अर्थ होता है हुआ, लेकिन अभूत माने जिसको हमने देखा है और बभुआ माने जिसको हमने देखा नहीं है। जैसे कि कोई बैठा हुआ ओहो हमारे सामने समय अभी बैठे हैं, बोले ओ बैठे हैं अभी बैठे, लेकिन आपके जाने के पहले बैठा हुआ कोई हो, अरे यू तो बहुत पहले से बैठा हुआ है। तो यहां अर्जुन जो बैठा ना, कैसे बैठा हो, अरे ऐसे बैठा जैसे कि पता नहीं कब से बैठा हुआ हो, मन इतना चुप हो गया, वो इतना तूषणी मन इतना चुप हुआ कि मानो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से बैठा हुआ है, ऐसा शांत हो गया। ये ऊपर और भगवान के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर शरणागति अव्यक्त कर दी, साधिमा। अब यहां उद्धव जी महाराज जी के जीवन में भी यही भाव है, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, शरणम प्रपद्ये, बोले तुम्हारी मैं शरण में हूं। शरणागति आज घटी, ब्रह्म जिज्ञासा का उदय आज हुआ। वर्षों से भगवान के साथ रहते हैं उद्धव जी महाराज, लेकिन ज्ञान को पाने का क्षण आज आ गया, शरणागति आज घटी। भगवान को मानते थे बहुत, लेकिन भगवान को गुरु बनाया आज, भगवान ने अवसर निर्मित किया, उनके भीतर शिष्यत्व को जगाया, और जैसे भगवान ने शिष्यत्व को जगाया और उसी समय जिज्ञासा को व्यक्त कर दिया उद्धव जी महाराज जी ने, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आज गुरु और शिष्य का संबंध हुआ। पहले तो भक्त और भगवान का संबंध था, अभी तक का जो संबंध था वो भक्त और भगवान का संबंध था, लेकिन आज भक्त और भगवान का संबंध नहीं, गुरु और शिष्य का संबंध। श्री भगवान वहां जो भगवान ने ज्ञान को उपदेश किया, प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति ही आत्मानम आत्मय आत्मना एव अशुभाशयात। भगवान ने बहुत सुंदर बात बोली, भगवान ने अपनी बात नहीं बोली, ध्यान देना, भगवान ने कहा उद्धव मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत लोगों में प्रसिद्ध है और बहुत गोपनीय है, ज्ञानियों के मध्य में गोपनीय है, जो बात मैं आपको उपदेश करूंगा। आत्मनो गुरु आत्मैव, सबसे पहले भगवान ने सूत्र दिया बहुत महत्वपूर्ण, बोले तुम अपने खुद के गुरु खुद बन जाओ। भगवान ने कहा तुम स्वयं के गुरु स्वयं बनो, आत्मनो गुरु आत्मैव गुरु आत्मैव। भगवान ने कहा तुम खुद स्वयं के गुरु बनो। भगवान बुद्ध ने भी बोला अपने शिष्यों को, बोला अप्पदीपो भव, खुद स्वयं के गुरु बनो। ये स्वयं के गुरु बनो का अर्थ ये नहीं कि स्वयं गुरु बन के बैठ गए, ओ भगवान ने बोला है स्वयं के गुरु बनो, ओ बन गए गुरु, हमको गुरु की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा वो। यहां खुद गुरु होने का अर्थ क्या है, गुरु होने का अर्थ है जैसे दिया जलाओ, खुद दिया बनो, गुरु दिया है, गुरु जो है दीपक है और आप ज्योति हैं, आप ज्योति की चारों ओर घूम रहे हैं, आप खुद दिया है, बाती हैं आप, लेकिन अभी दिए के सानिध्य में केवल घूम रहे हैं, तो अंधकार मिटेगा, आपको ज्योति होना होगा, आपको अपनी बाती को आग के साथ जोड़ना होगा, उस दीपक के साथ जोड़ना होगा। आप दिया बने बिना, आप खुद दीपक बने बिना अंधकार को मिटा नहीं सकते, आप खुद ज्ञान बने बिना अपने अज्ञान को मिटा नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा केवल सुनोगे कि बनोगे, आप केवल अपने गुरु को सुनोगे, आप केवल अपने गुरु को देखोगे कि आप गुरु बनोगे। भगवान ने कहा खुद बनो, खुद बनो, मेरे से जुड़ो और खुद बनो। और मेरे से जुड़ने का अर्थ भी क्या है? यदि तुम दिए के साथ हो और दिया न बने, आप केवल बाती बन के घूमोगे तो अर्थ क्या है? बाती होने का भी अर्थ क्या है? बाती होने का भी अर्थ तब है जब वो बाती दिया बन जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम बनो गुरु, तुम ज्ञान को स्वीकार करो। पहला उपदेश बड़ा सुंदर किया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप सीधे बैठ गए दो मिनट के लिए। आज धनतेरस है, अब उसके बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया। सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में परमात्मा ज्ञान वैराग्य का धन आए, यही आपके धनतेरस की शुभकामनाएं। ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
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 शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः 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 शिवाय,
शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः 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 शिवाय, ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
नमः शिवाय,
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः,
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।